أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الله تعالى تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات کو ان کے اہل کے سپرد کیا کرو اور جب تم لوگوں پر انصاف کے لیے مقرر کیے جاؤ یہ مقرر کرنے کا معنی میں نے اپنی تقسیمن بیان مفہوم کے طور پر بیان کیا ہے آیت ترجمہ صرف اتنا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان مقرر کیے جاؤ کا معنی میں نے اس لیے بیچ میں بیان کیا ہے کہ پہلے حصے آیت کے پہلے حصے کا اس سے تعلق ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا एक माना इसका यह है कि ऐ तो अपने हाकिमों का इंतखाब करने वालों, जब तुम अपने हाकिम चुना करो, अमीर चुना करो, तो याद रखो कि उसी को चुनो जो इसका अहल हो। अब आयत करवट बदलती है और जो चुना जाता है उसको मुखातिब होती है। इन मानों में मुकर्रर होने का मफहूम इसमें दाखिल है। बस माने ये हुए कि वो जो चुने जाते हैं, जिन पर एतमाद किया जाता है, जिनको अहल समझा जाता है, जब वो किसी ओहदे पर फायज कर दिए जाएं, तो उनको खुदा ताला हुक्म देता है कि वो फिर इंसाफ से फैसला करें। इन्नल्लाह नाइम्मा यअज़ुकुम बिह, अल्लाह बहुत ही अच्छी नसीहत करने वाला है। कैसी प्यारी नसीहत फरमाता है, इन्नल्लाह काना समीउन बसीरा, अल्लाह बहुत सुनने वाला और बहुत देखने वाला है। इस मज़मून से मुतल्लिक और कहने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुज़श्ता खुतबे में जब मैंने ये बयान किया कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सिवा मुझे तमाम नबियों की तारीख में एक भी और नबी दिखाई नहीं दिया जिसको खल्क़े खुदा अमीन कहती हो, जिसकी शोहरत अमानत और दयानत की ऐसी आम हो गई हो कि कौम उसे देखकर अमीन अमीन पुकार उठे। इस पर किसी ने मुझे तवज्जो दिलाई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी एक औरत की गवाही है कि वो कवी और अमीन हैं। हालांकि ये इन दो बातों में बहुत नुमाया फ़र्क है। कहाँ यह है कि पूरी कौम जिसके साथ एक शख्स का वास्ता पड़ता हो, बचपन से लेकर जवानी तक उसने उसको हर हाल में देखा हो, वो बेख्तियार यकजुबान होकर किसी को अमीन कहती रहे, और कहाँ यह किस्सा जिसके उसके साथ कोई रिश्त नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दो बेचारी बच्चियों के देवर को पानी पिलाया तो उन्होंने घर जाकर जो अपने बाप से ये हकायत बयान की, बताया कि हमसे एक नेक दिल आदमी ने क्या सलूक किया था, तो साथ ही ये मशवरा भी दिया कि उनको अपने पास रख लो, काम आएगा, और इस ज़मन में कहा कि कवी भी हैं और अमीन भी हैं। तो जो हज़रत मूसा से वास्ता था, अव्वल तो वो सरसरी महज चंद लम्हों का वास्ता था, और फिर एक लड़की की गवाही थी, और इस गवाही में दरअसल एक दिफा था, एक नफसियाती कैफियत थी जिसका इजहार किया गया है। एक लड़की जब अपने बाप से किसी मर्द को मुलाजिम रखने के मुतल्लिक बात करती है तो उसके शऊर में या लाशऊर में, उसके शऊर के पस मंज़र में कहने, ज़रूर ये ख्याल पैदा होगा कि मेरा बाप क्या सोचेगा कि किस किस्म का आदमी है, किसकी सिफारिश कर रही है। तो उन चंद लम्हों में जो उस बच्ची ने हज़रत मूसा के किरदार का अंदाज़ा लगाया था, उस अंदाजे को इस तरह पेश किया कि उसे घर में रखने से कोई ख़तरा नहीं है, हमने जो जहाँ तक देखा है वो कवी है और अमीन है। कवि से मुराद ये है कि अपनी अमानत की हिफाजत करना भी जानता है, कोई कमज़ोर ऐसा इंसान नहीं जो आज कुछ हो और कल कुछ हो। मुतलवन मिजाज आदमी अगर अमीन भी हो तो उसकी अमानत का एतबार नहीं रहता। तो एक बात तो यकीनन है कि हज़रत मूसा के किरदार में एक ऐसी अज़मत पाई जाती थी कि उसे देखकर उस बच्ची ने मौके के मुताबिक एक बहुत उम्दा फैसला किया और बहुत उम्दा उसका तारुफ़ करवाया। लेकिन इसे ये कहना कि गोया सारी कौम ने हज़रत मूसा की अमानत की गवाही दी हो, ये दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक अम्बिया का ताल्लुक है, अम्बिया पर इसके बरक्स इल्ज़ाम तो लगे हैं, लेकिन कौमी गवाही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवा किसी के हक में नहीं दी गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर, जिसके घर थे, उसके घर में अमानत पर खयानत का इल्ज़ाम लगा, खुदा ताला ने उस इल्ज़ाम को सरासर झूठा साबित कर दिया। लेकिन ये बात की बात है। حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا اپنے بھائیوں کی طرف سے, حضرت کرشن پر ان کے اپنے ماننے والوں کی طرف سے چوری کا الزام ہے, ان کا نام ہی مکھن چور رکھا ہوا ہے. تو انبیاء بیچاروں کے اوپر ناجائز غلط الزام, دل آزاری کے الزام لگتے رہے ہیں, خود حضرت موسیٰ پر بھی لگتے تھے. چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, اے ایمان والو دیکھو موسیٰ کے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو موسیٰ کو غلط باتیں کہہ کر دکھ پہنچایا کرتے تھے, غلط الزام اس پر لگایا کرتے تھے. فبرہ اللہ مما قالوا, بس اللہ نے اس کو بری فرمایا. تو قوموں نے اپنے اپنے انبیاء سے نبوت سے پہلے بھی بڑے ظلم کے سلوک کیے ہوئے ہیں, کئی قسم کے الزام لگائے ہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اتنا واضح طور پر نمایاں صاف اور روشن تھا کہ سبھی قرآن کریم نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان سے کہہ دے قد لبثت فیکم عمرًا من قبلہ فلا تعقلون, تم میں میں اس سے پہلے ایک پوری عمر گزار چکا, تم سارے گواہ ہو کہ ادنا سا ایک ذرہ بھی کردار کے داغ کا تم نے مجھ پر لگانے کی بھی کوشش نہیں. بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور خیانت, امانت اور دیانت اتنی نمایاں اور صاف اور روشن ہو کے چمکی ہے کہ اگرچہ تمام انبیاء امین تھے, تمام انبیاء دیانتدار تھے اس میں ذرہ بھی شک نہیں, لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان انبیاء کو رکھا جاتا ہے تو ویسی ہی کیفیت دکھائی دیتی ہے. جیسے کسی نے کہا کہ رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور, رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. تو اتنا حسین, اتنا روشن چہرے والا انسان ہے کہ تیرے مقابل پر جب ہم نے محفل میں شمع پر دیکھا تو نور کا کوئی نشان دکھائی نہ دیا. بس یہ موازنے کی باتیں ہیں, شمع تو روشن ہی ہوتی ہے, اگر ایک روشن تر وجود جب شمع کے سامنے آ جائے تو شمع کی روشنی مدھم اور پھیکی پڑ جایا کرتی ہے. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعریف میں کسی اور بزرگ نبی کی برائی ہرگز مقصود نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, سب اپنے اپنی جگہ اچھے تھے, سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر, لیکن خدا برتر خیر الورا یہی ہے. جو شان دیانت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں چمکی ہے ویسی آپ شان ساری دنیا میں آپ ڈھونڈ کے دیکھیں آپ کو کہیں اور دکھائی نہیں دے گی. دوسرا جو مجھے متوجہ کیا گیا وہ ایک معمولی نقطہ ہے, میں نے یہ بیان کیا تھا مثال دیتے ہوئے کہ تصنیف کا شعبہ بھی ایک اہم شعبہ ہے اور اس کا حق ادا کرنے کے کیا طریق ہیں, وہ بھی تو ایک امانت ہے. مجھے یہ بتایا گیا کہ باہر کی دنیا میں تصنیف کا شعبہ الگ نہیں ہے بلکہ اشاعت کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے, تو قطعاً عملاً تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, اشاعت میں تصنیف داخل ہو یا تصنیف کا شعبہ الگ ہو, جہاں تک ذمہ داریوں کا تعلق ہے وہ تو اسی طرح رہتی ہیں. بس جماعتی امانتوں کے سلسلے میں اب میں ایک دو اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اصلاح و ارشاد یعنی تبلیغ اور دوسروں تک حق بات پہنچانا اور دعوت اللہ, تمام بری نو انسان کو اللہ کی طرف دعوت دینا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے, اور دنیا کے ہر ملک میں جہاں نظام جماعت قائم ہے وہاں خدا کے فضل سے یہ شعبہ بھی رائج ہے. لیکن جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے بہت کم دعوت اللہ کے یا اصلاح و ارشاد کے سیکرٹری ایسے ہیں جنہیں اس بات کا شعور ہے کہ وہ ہیں کیا, اپنے منصب کا ہی پتہ نہیں, یہ علم نہیں کہ ان پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور انہیں کس طرح ادا کرنی ہے. اگر تمام سیکرٹری پوری ذمہ داری سمجھتے ہوئے, اپنی پوری ذمہ داری سمجھتے ہوئے بیدار ہو جائیں और फाल हो जाएं तो सारी दुनिया की जमातों में एक शोर बरपा हो जाए। सेक्रेटरी माल की मिसाल देखें, वो एक ऐसा सेक्रेटरी है जो रिवायतन मुसलसल बड़ी साल हा साल से जमात में बड़ी मेहनत और खलूस और मुस्तकिल मिजाजी से काम करता चला आता है, और सेक्रेटरी माल के तसव्वुर के साथ ही एक मेहनती पुरखलूस अमानत का हक अदा करने वाला, दिन रात इस फिक्र में गलता कि मेरा बजट कैसे पूरा होगा, ऐसे वजूद का एक तसव्वुर उभरता है। बिल्कुल ऐसा ही तसव्वुर हर दूसरे शोबे के सेक्रेटरी के मुतल्लिक जमात में कायम होना चाहिए, और ये तभी कायम होगा तसव्वुर जब वो ऐसे काम करेंगे। जहां तक मैंने नजर दौड़ा के देखा है, खुदा के फजल से सेक्रेटरी माल इल्ला माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं। कराची के सेक्रेटरी माल जो मुझे याद है, बहुत बचपन के जमाने से अब तक जो भी रहे उनका ये हाल रहा कि वो सुबह दफ्तर जाते थे, दफ्तर से जमात के दफ्तर चले जाया करते थे, जमात के दफ्तर से रात 11-12 बजे उस वक्त घर लौटा करते थे जब सब बीवी बच्चे सो चुके हों। और ये एक दो दिन एक दो महीने की बात नहीं, साल हा साल उम्रें गुजार दी उन्होंने इसी तरह। जो शख्स अमानत की अहमियत समझता हो, वो अमानत का हक अदा करने लगे तो उसको महसूस होता है कि उसकी सारी जिंदगी भी उसमें सर्फ हो जाए, तब भी उसे उसके दिल को अमानत का हक अदा करने का चैन नसीब नहीं हो सकता। वो यही समझता रहता है अपनी जात में कि अभी ये कोताही हो गई, अभी वो कोताही हो गई, अभी तक जैसा कि हक था मैं वैसा काम नहीं कर सका। इस जज्बे के साथ जमात के अहदेदारों को पहले अपने मनसब को पहचानना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को शऊर हासिल करना चाहिए, उस शऊर के मुताबिक फिर उनका दिल जाग उठेगा, उनका एहसास जिंदा हो जाएगा, उन्हें अपनी ज़ात से तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, वो महसूस करेंगे कि उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। और ये बोझ है जो एहसास की शिद्दत है जो उनको काम के लिए आगे बढ़ाती चली जाएगी, लेकिन वो एहसास ही बेदार ना हो, वो शऊर ना हो, पता ना हो कि हम क्यों बनाए गए, किस मकसद के लिए, क्या जिम्मेदारियां हम पर डाली गई हैं, तो जमात के काम तो उसी तरह पड़े रहेंगे। बस जो कुछ दावत अल्लाह में हो रहा है वो उन इनफरादी अहमदियों की वजह से हो रहा है, इनफरादी तौर पर अहमदियों की वजह से हो रहा है जो मुख्तलिफ तहरीकात के नतीजे में खुद अपने दिलों में एक वलवला पैदा कर लेते हैं। बाज ऐसे हैं जिनको जुनून हो जाता है फिर तबलीग का, वो दिन रात उसमें लगे रहते हैं। और सेक्रेटरी इस्लाह और इरशाद का ज़्यादातर काम यह है कि उनके फल समेट कर अपनी तश्तरी में सजा कर जमात को पेश कर दें। तश्तरी तो तश्तरी रहेगी, वो दरख्त जिसने फल पैदा किया असल तो उस दरख्त की कदर व कीमत उसी की शान है। बस आप भी वो दरख्त बन सकते हैं, हर सेक्रेटरी वो दरख्त बन सकता है जो बराबर साबित हो, जिसे शीरी दायमी फल लगें। एक फर्द को तो थोड़े फल लग सकते हैं क्योंकि उसकी उसका दायरा कार महदूद होता है, लेकिन जब एक ओहदेदार फाल हो जाए, एक समरदार दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो फिर जो उसकी कोशिशों से सारी जमात को फल लगते हैं वो उसके फल बन जाते हैं। ये ऐसा दरख्त होता है जिसके साए तले सारी जमात आ जाती है, उसकी शाखें दूर दूर तक जमात में फैलती हैं और उन जमात को फैस पहुंचाती हैं। इसीलिए हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी मिसाल एक ऐसे दरख्त की सी दी है जिसकी शाखें दूर दूर तक दुनिया में फैलेंगी और उन शाखों के साए तले लोग आराम करेंगे और टहनियों पर परिंदे बैठेंगे, उसके फल से लोग फायदा उठाएंगे। वो सेक्रेटरियों को इस जिम्मेदारी के साथ अपने वजूद को अपने मनसब को समझना चाहिए और ये सोचते हुए काम करना चाहिए कि जवाब दे तो वह बाहर आ जाएंगे। अमीर ने जवाब तलबी ना की तो खुदा ताला जवाब तलबी करेगा। और एक और मुश्किल ये है कि जवाब तलबी के खौफ से भागने की भी जगह कोई नहीं, क्योंकि خدا تعالیٰ اپنی خدمت سے بھاگنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. خود عہدے کی تلاش میں، عہدے کی طلب میں آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا کر عہدہ لینا یہ نہایت مکروہ حرکت ہے. لیکن یہ بھی بہت مکروہ حرکت ہے کہ کام کے بوجھ سے ڈر کر انسان پیچھے قدم اٹھائے اور پیٹھ دکھا کر خدا کے کام دوسروں کے سپرد کر کے آپ بھاگ جائیں. بس یہ ایسی امانت نہیں ہے جس میں آپ کو اختیار ہے. یہ امانت وہ ہے جسے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عواقب سے بے خبر ہو کر خود قبول کر لیا تھا. اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے اور جانتے ہوئے کہ اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچے، پھر بھی اس امانت کو جو ساری دنیا کی ہدایت کا بوجھ تھا اٹھانے کے لیے آپ تیار ہوئے اور جہولہ ان معنوں میں اس کے عواقب سے بالکل بے پرواہ ہو گئے. اب تو اس امین کے غلام بن کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں. اس غلامی سے اس کا تعلق توڑے بغیر ہم اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے الگ نہیں ہو سکتے. یہ وہ مضمون ہے جس کی وجہ سے جماعت احمدیہ میں عہدوں سے استعفیٰ نہایت مکرو اور بہودہ حرکت سمجھی جاتی ہے. کئی لوگ لکھ دیتے ہیں جی ہمیں معاف کیا جائے، ہم اس قابل نہیں ہیں. قابل تو ایک ہی تھا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ہی کی غلامی، آپ ہی کے صدقے ساری دنیا قابل بنائی جا رہی ہے، اور آپ کے سب غلاموں کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں عطا ہوتی ہیں. بس قابلیت کا فیصلہ تو خدا نے کرنا ہے. یہاں قابلیت کا مضمون صرف اتنا ہے کہ جو کچھ ہے وہ لے کر حاضر ہو جاؤ، جتنی بھی قابلیت ہے وہ پیش کر دو. بس امانت کے مضمون کے ساتھ جب اس کو ملا کر آپ پڑھیں گے تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ امانت کیا ہے. امانت کی سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم میں جو طاقت نہیں ہے وہ بھی پیش کرو ورنہ خدا تمہیں پکڑے گا. امانت انسان کی استعدادیں بھی امانت ہیں، اس کی تمام صلاحیتیں امانت ہیں. اللہ کی امانت کا بوجھ اس پر اتنا ہی ڈالا جائے گا جتنا خدا نے اس کو صلاحیتوں کی امانت وظیفہ فرمائی. بس اس امانت کے ساتھ بیرونی امانت کا ایک تعلق و رشتہ ہے، ایک توازن قائم ہے، عدل قائم ہے اس کے درمیان. اللہ تعالیٰ عدل سے فیصلے فرماتا ہے. بس کسی کے لیے یہ موقع نہیں کہ اس کا ضمیر اسے کچوکے دے کہ تم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ منصب تمہاری طاقت سے بڑھ کر ہے، اس لیے اگر تم نے حق ادا نہ کیا تو مجرم بنو گے، اس چیز کو چھوڑ دو. چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جو خدا نے سعادت بخشی ہے اسے قبول کرنا ہوگا، کیونکہ یہ چھوڑنا محمد رسول اللہ سے رشتہ توڑنے کے مترادف ہے، اور کوئی سچا مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ہاں امانت طاقت کے مطابق ہوگی، جس قدر خدا نے توفیق بخشی ہے اس کے مطابق آپ کام کریں، لیکن اتنا ضرور کریں، کوشش ضرور کریں کہ توفیق کی آخری حدوں تک آپ کا کام پہنچ جائے اور آپ پورے کے پورے امانت کی ذمہ داریوں سے بھر جائیں، آپ کا وجود مکمل ہو جائے اس پہلو سے کہ جو کچھ بھی خلات ہیں وہ سارے بھر دیے جائیں. جو آپ میں طاقت تھی آپ نے اس کے مطابق خدا کے حضور امانت کا حق ادا کرتے ہوئے سب کچھ پیش کر دیا، پھر اللہ کے سپرد معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ احسان فرمانے والا ہے، عفو کرنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے. پھر جہاں جہاں کمزوریاں ہوں گی، خلا ہوں گے، جہاں بعض دفعہ ہم سمجھیں گے کہ ہم نے خدا کی خاطر کام کیا تھا مگر اپنی انا بیچ میں داخل ہو گئی، اپنے دکھاوے کی سرشت نے اس امانت کے حق کو گندا کر دیا، یا اور کئی قسم کے رکھنے ہمارے کاموں میں پیدا کر دیے، یہ تمام باتیں ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں. قیامت کے دن خدا جس کے سامنے کھولے گا اسی کو پالو معلوم ہوگا. بس یہ جو دوسرا مضمون ہے اس میں انکساری کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا عمل، اس کے اعمال اس کو زینت دکھائی دیتے ہیں، بہت خوبصورت سمجھتا ہے اپنے اعمال کو. फिर एक दिन खुदा के हजूर पेश होना है, वो बताएगा कि तुम्हारे अमाल की हैसियत क्या थी। बस जब आप सब कुछ कर बैठे उस वक्त भी महफूज मुकाम पर नहीं पहुंचते। हाँ, महफूज मुकाम पर पहुंचने की एक कोशिश है जो अपनी तरफ से भरपूर कर दी गई। महफूज मुकाम पर वही है जिसे खुदा महफूज करार देते हैं। अंबिया भी बेहद बेचैनी में जिंदगी बसर करते हैं, अमीन होते हैं, उसके बावजूद इसके कि वो अमानत का हर हक अदा करने की सरतोड़ कोशिश करते हैं, सारी जान उसमें हलकान कर देते हैं, फिर भी बेचैन रहते हैं कि कोई कमी न रह गई, कोई कमजोरी न जाहिर हो गई। इस रूह के साथ अगर जमात के अहदेदारान काम करेंगे तो मुझे अदना भी शक नहीं कि अल्लाह ताला उनकी कमजोरियों से मगफरत का सलूक फरमाएगा, उनकी पाक नीयतों को प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखेगा और उनके आमाल में, उनकी कोशिशों में गैर मामूली बरकत डालेगा। जहाँ भी जमात के कुछ खिदमत करने वाले इस तरह प्यार और इखलास से खिदमत करते हैं उनको जरूर बरकत मिलती है। यही इंग्लिस्तान की जमात में मैंने एक बच्ची का जिक्र किया, उसको खुदा ताला फल पर फल दे रहा है और जो अंग्रेज बच्चियां उसने मुसलमान बनाई हैं उनके ऊपर उसकी छाप दिखाई देती है। वही इखलास, वही इंतिसारी, वही दीन में बिशाशत और फिर आगे पैगाम पहुंचाने का जज्बा। अभी दो दिन हुए हैं यहाँ इंग्लिस्तान की जमात के एक नौजवान मुझे मिला, उसके साथ एक नया अहमदी था, वो भी बहुत ही चेहरे से नजर आता था, बेहद सिलाई और सिलसिले का आशिक और पूरी ईमान की बशाशत उसके चेहरे पर दिखाई देती थी। मुझे मालूम करके बड़ी खुशी हुई कि ये उसका बनाया हुआ अहमदी है, उसकी दावत से, हालांकि वो लड़का खुद बिल्कुल नौजवान है, छोटी उम्र का है। और फिर उसने बताया कि ये एक तो नहीं है, आप जब बर्मिंघम आए थे तो वहां भी मैंने एक पेश किया था, वो भी अल्लाह के फजल से ऐसा ही है। और फिर मजीद मुझे तहकीक से पता चला कि उसके वालिद बदकिस्मती से एमडी होने के बावजूद बहुत दूर जा चुके हैं और ये बच्चे अल्लाह की तरह का एहसान है, या उसके बुजुर्ग दादा की दुआएं होंगी या क्या माँ की दुआएं हैं जो उनके हक में कबूल हुई। सारे बच्चे ही अल्लाह की तरफ से मुखलिस एमडी, मगर ये नौजवान तो बेहद आशिक और दावत अल्लाह में फिदा, सब कुछ इसका दावत अल्लाह बन चुका है। इस छोटी उम्र में, नौजवानी की उम्र में ये फिदाइयत जिसको रसीव हो, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और बाकी जिनको नहीं नसीब, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है, क्यों नसीब नहीं, तुम्हें भी खुदा ने ऐसे ही आज़ाद दिए हैं, तुम्हें भी खुदा ने वो ताकतें अता की हैं जिन ताकतों को खुदा की राह में इस्तेमाल करने से ऐसे फल लग सकते हैं। इस लिहाज से हर अहमदी के लिए कम से कम अपने मनसब को इस लिहाज से पहचानना जरूरी है कि हमें तौफीक है, ये तो इतराफ़ करना होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई अहमदी कहे हमें तौफीक नहीं है इसलिए हम मजबूर हैं। तौफीक सबको है, इसलिए आपसे तौफीक के मुताबिक पूछा जाएगा। अगर 100 की तौफीक नहीं तो 10 की होगी, 10 की नहीं तो 1 की होगी, एक साल में एक नहीं तो चंद सालों में एक की होगी। तौफीक तो बहरहाल है। मैं मान ही नहीं सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग का कोई पौधा हो और वो बांझ हो। खुद बांझ बनना चाहे तो और बात है, मगर सलाहियतों के लिहाज से आपको उन सलाहियतों से नवाजा गया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों की सलाहियतें थी, जिनको खुदा ताला ने रिजाल नाम से याद किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू, इसके साथ दूसरी आयत में है रिजाल, उनका लफ्ज आपके गुलामों के मुतल्लिक इस्तेमाल हुआ है कि ये वो है जिसके साथी रिजाल हैं, रिजालुल्लाह तुलीहिम तिजारतुन, वो आयत है। रिजाल का मतलब है जिसमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, महज मर्द मुराद नहीं, आम इंसान नहीं, और ना इसमें दरअसल जिन्स की कोई बहस है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गुलाम, ख्वाब मर्द थे ख्वाब औरतें थीं,
रूहानी लिहाज से सब रिजाल थे, उनमें मरियमी सिफात थी, बगैर किसी और की एहतियाज के उनको बढ़ना आता था। इन मानों में रिजाल का लफ्ज जो मरियमी सिफात का मजर है मोमिनों पर भी आयद होता है, मोमिनात पर भी आयद होता है। तभी कुरान करीम ने तमाम मोमिनों की, खा वो मोमिन औरतें हों या मोमिन मर्द हों, मिसाल मरियम से दी है। बस आपके अंदर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं तो खुदा कहता है कि सलाहियत मौजूद है, आपको बढ़ना आता है, बढ़ना दिखाया गया है, आपके अंदर बढ़ना वजीयत फरमाया गया है, क्यों नहीं बढ़ते। इस नजर से अगर सेक्रेटरी माल अपने जमात का जायजा ले और इन खुदा के शेरों को बेदार करने की कोशिश न करें और हर महीने इस फिक्र में गलता न रहे कि इस महीने मैंने कितने नए अहमदी ऐसे पैदा किए हैं जिनके अंदर अपनी सलाहियतों का शऊर बेदार हो गया है, उठ खड़े हुए हैं, उनके अंदर का मर्द जाग उठा है, वो रिजाल में शामिल हो गए हैं और वो अब खुदा के फजल से वो काम शुरू कर चुके हैं जिसके नतीजे में लाजिमन उन्हें बढ़ना है, फूलना है, फलना है। ये वो बुनियादी काम है जो सेक्रेटरी इस्लाह और इरशाद का काम है। ये काम नहीं है कि वो जो तबलीग करने वाले हैं उनकी फल इकट्ठे करे और अपनी रिपोर्ट की तस्वीर में सजा के किसी को भिजवा दे और समझे कि मेरा काम बहुत उम्दगी से पूरा हो गया। ये तो डाकिया का काम है सिर्फ, सेक्रेटरी इस्लाह और इरशाद का काम तो वही है जो मैं बता रहा हूं। फिर उसको जायजा लेना चाहिए कि सारे मुआशरे में किस किस्म के लोग हैं, कितने मजाहब हैं, कितनी कितनी कौमों के लोग बसते हैं। जब से मैंने चार्ज लिया है मैंने उन पर नजर रखते हुए क्या काम किया है ऐसा जिससे पहले की नस्बत ज्यादा कौमों तक अहमदियत का पैगाम पहुंच रहा हो, ज्यादा कौमियतों की कौमों के अलावा ज्यादा मजहबों की तरफ जमात का पैगाम पहुंच रहा हो, मुख्तलिफ तबकात हैं उन तक पैगाम पहुंचाने के लिए मैंने क्या कोशिश की। अब तबकात की बात है तो देखें सिर्फ असातिज़ा का तबका तालीम याफ्ता तरक्की याफ्ता ममालिक में इतना बड़ा है कि अगर कोई सेक्टरी माल सिर्फ इस तबके को पेश नजर रखकर अपना जायजा ले कि क्या कोशिशें मैंने की हैं, कितने खला बाकी हैं, क्या चीजें होने वाली हैं, तो वो कांप उठेगा। हजार हा की तादाद में स्कूल के असातिज़ा इंसान में भी जहां तक मेरा ख्याल है 50,000 से तो लाजमन ज्यादा होंगे, बहुत बड़ी तादाद है, मुझे कोई अंदाजा नहीं, इसलिए मेरा 50 वाला जो 50 की जो गिनती है 50,000 की इसे इस पर बिना नहीं है। ये मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद है कि एक एक अहमदी को तकसीम करें तो कई कई उस्ताद हाथ में आएंगे। तो काम तो इतना ज्यादा पड़ा है कि अगर सेक्रेटरी इस्लाह और इरशाद इस काम का जायजा लेकर फिर खुदा से दुआ करते हुए आजिज़ाना कोशिशें शुरू कर दे, कुछ तरीके ढूंढे इस तबके को जमात की तरफ मुतवज्जे करने के, कुछ उनको सामने रखते हुए कुछ इश्तिहार बनाए या बनवाए, उनको बताए कि उनके पास हमारे पास यानी जमात के पास उनके लिए क्या है, कोई नसीहत के पैगाम भेजे। जरूरी नहीं हुआ करता कि तबलीग बराह रास्त खींच कर बुलाने को कहते हों, तबलीग पहुंचाने को कहते हैं और पहुंचाने से मतलब हर नेक बात पहुंचाना है। तभी अंबिया अलैहिस्सलाम सिर्फ ये दावत नहीं दिया करते थे कि आओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ, बल्कि नेकियों के पैगाम दिया करते थे और नेकियां बांटते फिरते थे। आजकल स्कूलों में जो बदियां रिवाज पा गई हैं, कई किस्म के खौफनाक जराइम वहां राह पकड़ गए हैं और आइंदा आने वाली नस्लों को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनसे मुतल्लिक एक अहमदी जज्बमंदाना तौर पर एक अपील करता है। सेक्रेटरी इरशाद उस अपील को जो पसंद करके उसको उलमा को दिखाकर जायजा लेने के बाद तसल्ली से उसको शाया करवा कर असातिज़ा में तकसीम करता है, तो कम से कम उन तक ये पैगाम पहुंचेगा कि एक को हमारे हमदर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो खालिसतन हमारी हमदर्दी से कुछ लोग नसीहतें करते हैं, सोसाइटी की इस्लाह होना भी आपकी कामयाबी है। सोसाइटी की इस्लाह का मतलब लाजिम यह नहीं है कि वो जरूर अहमदी मुसलमान हो जाए। इस्लामी कदरों के करीब आने का नाम इस्लाम है। जब ये कदरें ज्यादा बढ़ जाएं, तो अंदरूनी तौर पर उनका दबाव इंसान को उस मजहब को कबूल करने पर मजबूर करता है जिस मजहब से वो उसकी कदरें लेकर इस्तेफादा करता रहा है। बस अंबिया की तारीफ जहां तक मैंने कुरान करीम में पढ़ी है, उनका रुझान यही था, यही उनका दस्तूर था, यही उनकी सुन्नत थी कि नेकियां फैलाते थे और जहां नेकियां कायम हो जाएं वहां नेकों से मोहब्बत पैदा होना लाजिम है। बगैर नेकियां फैलाए किसी चीज की तरफ दावत देना महज भर्ती करने का नाम है, इसका कोई भी फायदा नहीं। बस इस पहलू को पेश नजर रखते हुए मुख्तलिफ तबकात को ऐसी बातें कहें जिनकी उनको जरूरत है, ये एक तरफ है तबलीग की। और भी बहुत से हैं, लिटरेचर के शोबे ने जो लिटरेचर तैयार किया है उसे मुख्तलिफ जगहों तक पहुंचाना, जहां शोबा इरशाद का काम है वहां इस्लाह इरशाद के सेक्रेटरी का ये काम है कि अपने मुबल्लिगीन के ऊपर नजर रखे किस किस हथियार की उनको जरूरत है और वो हथियार उन तक पहुंचता भी है कि नहीं, और किस किस सवाल का उनको सामना करना पड़ता है, उसका जवाब उनको आता भी है कि नहीं, कहां कहां बाकायदा मुनज्जम तौर पर इस्लाम और अहमदियत के खिलाफ एक साजिश पनप रही है और किस तरह अहमदी मुखलिसीन के ईमान पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है, उस पर नजर रखना, उसके जवाब की तरफ कोशिश करना, मुख्तलिफ दाईन अल्लाह की जरूरतें पूरा करने के अलावा उनके लिए दुआ करते रहना, और फिर यह अमूमी नजर रखना कि मेरे शोबे में गुज़श्ता साल के मुकाबले पर इस साल कितना इजाफा हुआ है। अगर 100 एमजी हुए थे तो इस साल कितने हुए हैं और आइंदा साल मैं कितने एमजी बनाने की सलाहियत रखता हूं। इसमें भी गैर मामूली दयानतदारी की जरूरत है, क्योंकि बाद लोग ये दावा कर देते हैं कि मैंने जैसा कि पहले भी एक मिसाल दी थी कि दुआ करें मेरे 100 एमजी हो जाएं और फिर तारे देने लग जाते हैं कि 100 एमजी के लिए दुआएं शुरू कर दें और सारा साल उंगली भी नहीं हिलाई होती तबलीग के लिए, बैठे रहते हैं चुप करके और जब वक्त गुजरने के करीब आ जाए तो कहते हैं जी 100 एमजी नहीं हुए अभी तक। और उनसे अगर पूछा जाए कि आपने 10 साल हुए ये इरादा किया था, हर साल साल के आखिर पर आप दुआ के लिए खत भी लिखते रहे और तारे भी देते रहे, एक भी नहीं बना 10 साल में, तो 100 का दावा करने का आपको क्या हक है? 100 का बुलंद इरादा कायम करने का आपको क्या हक है? सदाकत से काम लें, इंसाफ से काम लें, जितनी तौफीक है उसके मुताबिक कोशिश करें, बड़े बड़े दावों से तो काम नहीं बनेगा। बस सलाहियत का सही तखमीना करना भी तो एक बड़ा काम है। दावत अल्लाह के जो सेक्रेटरी हैं उनका और इरशाद इसका इस्लाह और इरशाद के जो सेक्रेटरी हैं, अगर अलग अलग हैं तो आपस में मशवरे के जरिए, अगर एक ही हैं तो अपने दूसरे साथियों से मशवरों के जरिए सलाहियत का तखमीना करना चाहिए। और सलाहियत का तखमीना महज आदाब से नहीं हो सकता कि इतने एमजी हैं इसलिए इतने जरूर बन जाएंगे। सलाहियत का तखमीना इस बात से भी नहीं बन सकता कि किसी ने कितना वादा किया है। सलाहियत का तखमीना इस बात से होगा कि सेक्रेटरी इस्लाह इरशाद या सेक्रेटरी दावत अल्लाह इन अहमदियों का जायजा ले और उनका तखमीना लगाए किसमें कितनी सलाहियत है। जिसने गुज़श्ता 2-4 साल में 1-2 पैदा किए हैं उनकी सलाहियत बढ़ाने की तरफ कोशिश करें, वो कती सलाहियत। जो नए बन शामिल हो रहे हैं उनसे उनका जायजा, उनसे करीब का ताल्लुक, उनकी सलाहियत का अंदाजा नहीं लगाना बल्कि उनकी खामियों को दूर करने की कोशिश करना, उनकी सलाहियत को मजीद सैकल करना, यहां तक कि तसल्ली हो जाए कि हाँ अब 1 या 2 या 4 या 5 एमजी बनाने के अहल हो चुका है, इसको कहते हैं सलाहियत का तखमीना। محض رپورٹ میں لکھ دینا کہ جی ہم نے 10,000 کا وعدہ کر لیا ہے, 10,000 بنا بھی چھوڑیں گے, اور آخر پر 5 یا 10 نکلتے ہیں اور وہ بھی وہی جو پہلے ہی کام کر رہے ہیں انہی کے کاموں کے نتیجے میں نکلتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے اس کو پیش نظر رکھ کر عمرا کو چاہیے وہ اپنی سیکٹری اصلاح اور ارشاد سے بھی ایک میٹنگ کریں, جائزہ لیں کہ جب سے وہ بنائے گئے ہیں انہوں نے کیا سوچا ہے, کیا کچھ کیا ہے, اس کے نتیجے میں جماعت میں کیا ولولہ پیدا ہوا, کیا بیداری پیدا ہوئی. پھر ولولے اور بیداری پیدا کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں, جو اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی مثالیں دی جائیں. جیسا کہ میں نے ایک دو مثالیں انگلستان کی جماعت کی رکھی ہیں, ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو دنیا میں پھیلی پڑی ہیں بہت اخلاص کے ساتھ, افریقہ میں بھی اور امریکہ میں بھی اور یورپ اور ایشیا کے ممالک میں بھی ایسے احمدی موجود ہیں جنہوں نے نہایت اعلیٰ نمونے دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ خدا نے جماعت کو صلاحیت عطا کی, یہ ثابت کر دیا ہے کہ پیغام میں طاقت موجود ہے, پیغام میں جذب اور کشش موجود ہے, اگر کوئی انسان کرنا چاہے تو ضرور کر کے دکھا سکتا ہے. ایک امریکہ ہی میں نیو یارک کے ایک احمدی بچے ہیں, ان کے متعلق بھی میں نے شاید پہلے کبھی ذکر کیا یا نہیں, مگر ان کی تبلیغ سے دن بدن ان کے ساتھی طلباء احمدی ہوتے چلے جا رہے ہیں, ایسے ایسے مخلص احمدی بن رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ کے بڑے دباؤ, ان کی سوسائٹی کے دباؤ, کوڑی کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی. اسی ضمن میں ایک دائی اللہ کا آج ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں جن کی شہادت کی آج اطلاع ملی ہے. گجرانوالہ کے ہمارے ایک دائی اللہ تھے جو ان کا نام محمد اشرف صاحب مہر آف جلہن یا جلن ضلع گجرانوالہ, 84 میں یہ خود احمدی ہوئے نوجوانی کی عالم میں, زیادہ عمر نہیں تھی, اور بہت جلدی احمدیت میں ترقی کی. دعوت اللہ کا جنون تھا جو ان کے سر پہ سوار تھا. مجھ سے بہت گہرا ذاتی محبت کا تعلق, ہماری آپس میں خط و کتابت, اور بڑی دیر سے مجھے لکھ رہے تھے کہ میں تو جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہوں, سارا علاقہ اب جان کا دشمن ہے اور خون کا پیاسہ بنا ہوا ہے, سوائے اپنے گھر کے میری بیوی اور میرے بچوں کے برادری میں کوئی بھی میرا نہیں رہا, لیکن مجھے کوڑی کی بھی پرواہ نہیں, میں تو مگن ہوں اس کام میں. اور دن رات یہی پیشہ تھا ان کا. ان کے اوپر نہایت ہی بزدلانہ اور کمینہ حملہ ہوا کل رات. ایک شخص, وہ چونکہ اس میں پیرا میڈیکل کوئی تنظیم ہے, اس میں نائب قاصد تھے, ڈاکٹری کا کسی حد تک علم رکھتے تھے, تو ایک مریض بن کے نوجوان آیا اور اس نے کہا میں پھر دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. پھر وہ اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو لے کے آیا, ان کے گھر آ گیا اور ایک جھوٹا پتہ اپنا دیا, اور انہوں نے ان کی حالت یہ تھی کہ کوئی ان کی بات سنیں تو اس پہ فدا ہو جایا کرتے تھے. اس شخص نے صرف اتنا کہا کہ میں بھی ایک قسم کا میں احمدی ہوں, یعنی چھپا ہوا تھا. اس پر وہ واری ہونے لگے. ایک اور احمدی دوست سے ملانے کے لیے ایک دوسرے گاؤں گئے. اس کو علم تھا کہ جس جگہ کا یہ بتاتا ہے وہاں اس نام کا کوئی احمدی نہیں. اس نے جب اس کو پکڑا تو اس نے کہا نہیں, میں ساتھ کی ایک جگہ کا ہوں. بہرحال اپنے معصومیت میں اور تبلیغ کے جوش میں اس سے کہا ہاں پھر بھی آنا. وہ دوبارہ اپنے ساتھ ایک اور شخص کو لے کے آیا. رات کو انہوں نے بڑے اخلاص اور محبت سے اس کے لیے چرپائیاں بچھائیں, کھانے کا کہا, تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ٹھہر کے. پھر دونوں نے پیٹ بھر کے ان کے یہاں کھانا کھایا, اور رات سوتے میں ایک دو گھنٹے کے بعد ہی سر پر پسٹول سے فائر کیے, چہرے پر, ان کے بچے پر بھی. اور یہ تو جب تک خون گرم تھا یہ اس کے پیچھے بھی دوڑے دروازے تک, لیکن وہاں جاتے ہی گرے اور وہیں دم توڑ دیا. لیکن بچہ زخمی جو تھا وہ بچ گیا. ان کی اہلیہ بھی بڑی بہادر اور خدا کے فضل سے بالکل نظر دعوی دائی اللہ ہے. ان کے بچوں کا بھی یہی حال ہے. اسی وقت والدہ نے بچے کو دوڑایا کہ ساتھ کی گاؤں میں جہاں وہ ان کو ساتھ لے کے گئے تھے ان دو بدبختوں کو, ایک میں سے ایک کو, وہاں جا کے اطلاع کرو. جب انہوں نے اس بچے نے اطلاع دی تو وہ سارے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. شہید کا بیٹا ان کو تسلی دلا رہا تھا, کہتا آپ کو کیا ہو گیا ہے, میرا باپ تو نیک انجام کو پہنچا ہے, بڑا بہادر آدمی تھا, ہمیں کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے, خدا ہمارا والی ہے, اور میری والدہ بھی اس معاملے میں بڑی خوش ہے کہ خدا کی بند کی, خدا کی امانت خدا کو پہنچی, اور بہادری کے ساتھ وفا کے ساتھ اس نے سچائی پر جان دی. ایسے ایسے دائی اللہ بھی ہیں, جان پر کھیل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. انشاءاللہ جماعت میں تو شہیدوں کا کوئی بچہ یتیم نہیں رہ سکتا, یتیمی کی تو فکر نہیں, کیونکہ ساری جماعت اللہ تعالیٰ کی جماعت جس کی سرپرستی کر رہی ہو وہ یتیم کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اس بہادری کے باوجود جو پیاروں کی جدائی, اور ایسے اچھے پیاروں کی جدائی کا دکھ ہے, وہ اچانک ایک دم تو نہیں مٹ سکتا, بلکہ ایسے دکھ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھ جایا کرتے ہیں. ابھی چوٹ گرم ہے, ابھی پتہ نہیں لگ رہا, وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا احساس, ان کی کمی کا احساس بڑھتا رہے گا. وہ بھی میرا خطبہ شاید اس وقت بہرحال سن رہے ہوں گے, ربا والوں کی طرف سے اور دوسری جگہوں سے جو خط مل رہے ہیں, ان خطوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بڑے شوق سے خطبوں میں حاضر ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہماری دیکھنے کی پیاس بجھ رہی ہے, کچھ تو قرب کا احساس ہو رہا ہے. اس سے اللہ کے فضل سے جماعت کی تربیت پر بھی بڑا فرق پڑ رہا ہے. گھر گھر میں جہاں پہلے دوسرے پروگرام دیکھنے کے لیے اڈے ہوا کرتے تھے ٹیلی ویژن کے, اب پتہ لگا ہے کہ لوگ شوق سے انٹینز لگا رہے ہیں اور خاص ڈش لگا کر خطبوں میں خود بھی شامل ہوتے ہیں اور ساتھ کے ہمسایوں کو بھی دعوت دیتے ہیں. بعض خاندانوں نے اپنے بعض گھروں میں خطبے لگائے ہوئے ہیں انٹیناز, اور یہ ساری دنیا میں رواج چل پڑا ہے. تو مجھے یقین ہے وہ سامنے بیٹھے ہوں گے, آج شاید ان کا جنازہ بھی ہو چکا ہو, تو ان کو میں بہت ہی محبت بھرا سلام پہنچاتا ہوں, اپنی طرف سے بھی ساری دنیا کی جماعت کی طرف سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ نے بڑی سعادت بخشی ہے, اور ایسی سعادت بخشی ہے جس کے نتیجے میں جدائی کا غم ہونے کے باوجود ایک خوشی اور تشکر کا احساس لازماً دل میں پیدا ہونا چاہیے. بڑا خوش نصیب ہے انسان اس طرح شان کے ساتھ سر اٹھاتے ہوئے خدا کی راہ میں اپنا سر دے, اور اس کے بیوی بچے کتنے مبارک کے مستحق ہیں, کتنے حسین اخلاق کے مالک ہیں. اس غم کے موقع پر, صدمے کے موقع پر سعادت پر نظر رکھی ہے اور نقصان پر نہیں رکھی, اور جو کچھ پایا ہے اس کے زیادہ ہونے کا احساس ہے جس نے ان کو اس وقت سہارا دیا ہے, جو کھویا ہے اس کو معمولی سمجھنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام خود بنائے, ان کے سب بوجھ خود اٹھائے, ان کا والی ہو, ان کا حامی و ناصر ہو, اور اس شہادت کو خدا تعالیٰ بہت پھول پھل لگائے. تو محمد علی کا وہ ایک شعر ہے ایسا جو خدا کے نیک بندوں کو پھول پھل لگنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ برگزیدہ شجر لڑ رہا تھا موسم سے کہ پھولنا تھا اسے, برگ و بار دینا تھا. تو احمدیت کا برگزیدہ شجر تو موسم سے لڑتا رہے گا, ایک شاخ تراش لو گے, ایک پھول توڑ لو گے تو کیا اس شجر کو مار دو گے؟ بہت جاہل ہو, یہ تو وہ شجر ہے جو خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے, یہ موسم سے اسی طرح لڑتا رہے گا. یہ برگزیدہ شجر ہے, اسے پھولنا ہے, اسے پھلنا ہے, اسے برگ و بار دینا ہے, اور دیتا چلا جائے گا. بس امانت کا حق ادا کرنے والوں کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری جان بھی امانت ہے, امانت کا حق ادا کرتے ہوئے جان بھی جائے تو وہی مضمون اس پر صادق آتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, پر اس جذبے سے اگر احمدی اپنے حقوق ادا کرنا شروع کریں تو دیکھیں دنیا پر خدا تعالیٰ کے فضل سے کتنی جلدی جلدی اللہ تعالیٰ ان کا روپ قائم کرتا ہے, ان کو نشو و نما عطا فرماتا ہے, ان کو بڑھاتا ہے. اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جب یہ کسی کام کرنے والے پر پیار کی نظریں پڑنے لگ جائیں تو وہیں اس نے اپنے مقصد کو پا لیا. اور جب خدا کے پیار کی نظر کسی درخت شجر پر پڑتی ہے تو وہ ضرور پھولتا پھلتا ہے. ऐसा शजर बाग रह ही नहीं सकता। तो जो ओहदेदार हैं वो इस तरह काम करें, इस नीयत से काम करें, अल्लाह की रजा की प्यार की नजरें उन पर पड़ने लगें, और काम करने वाले खुद अपने अपने दायरे कार में इसी तरह काम करें। मकसूद ये हो कि मेरे प्यारे मौला की नजर मोहब्बत की और तहसीन की मुझ पर पड़ने लगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने देखें कितने प्यार और कितने नाज से बार बार फरमाया है, सुबहाना मैं यरानी, सुबहाना मैं यरानी, मुझे क्या फिक्र है, मैं वो जात मेरा महबूब प्यारा और बहुत पाक है और बहुत बुलंद है, जो हर हाल में मुझे देख रहा है, एक लम्हा के लिए मुझे उसकी निगाह मोहब्बत की निगाह छोड़ती नहीं। ऐसे शख्स के काम कैसे बेफल के रह सकते थे। वही एक है जो आज करोड़ बन गया है, तमाम दुनिया में जिसके नाम का डंका बज रहा है, जिसकी शोहरत जमीन के किनारों तक जा पहुंची है। आप में से हर एक में वो सलाहियत मौजूद है जो अगर खुदा के प्यार की का मोहरत बन जाए, उस सलाहियत पर खुदा के प्यार की नजर पड़नी शुरू हो जाए तो ये जरूर चमकेगी, जरूर नशोनुमा पाएगी, जरूर फूल फल लाएगी। अमानत का हक इस तरह अदा करने की कोशिश करें, देखें फिर खुदा ताला किस तरह आपसे मोहब्बत और प्यार का सलूक फरमाता है, और तमाम दुनिया में बड़ी तेजी के साथ अहमियत का पैगाम फैलना शुरू हो जाता है। एक दूसरे शहीद का जिक्र मैं करना चाहता हूँ, जो मुबशर अहमद साहब चौधरी, मुबल्लिग सिलसिला कानो नाइजेरिया, ये मुबल्लिग सिलसिला हैं और नाइजेरिया में तबलीगी फराइज सर अंजाम दे रहे थे कानो स्टेट में। इनके मुतालिक आज ही फैक्ट से इत्तला मिली है कि अपने दीगर दोस्तों के साथ तबलीगी सफर पर एक कार में सफर कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक खाई में कार गिर गई और वहाँ हमारे अजीज भाई मुबशर अहमद ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया और दूसरे दो साथी जख्मी हुए, लेकिन अल्लाह के फजल से उनकी हालत खतरे से बाहर है। ये शहीद हैं अव्वल इस माने में कि जो भी मुबल्लिग खिदमत दीन के लिए बाहर निकलता है और खिदमत दीन की हालत में जान देता है, बिलाशुबा वो शहादत का आला दर्जा हासिल करता है। मैं तलवार से लड़ने वाला शहीद नहीं हुआ करता जो खुदा की खातिर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर नहायत मुसीबत के हालात में, तंगी और तकलीफ के हालात में खिदमत दीन के लिए मुख्तलिफ मैदानों में निकलता है। जिस मैदान में उस पर मौत है वो यकीनन शहीद शुमार होगा, लेकिन फिर उस मैदान के अंदर वो वक्त और वो सफर जिस हालत में उन्होंने जान दी है, वो खास तौर पर तबलीग पर जाने वाला सफर था। एक और तीसरी बात जो इस मामले में इनके मकाम और मर्तबा को शहादतों में एक नुमाया हैसियत देती है वो यह है कि अमीर साहब ने ये गवाही लिखी है कि एक साल पहले मुझे इस मुबशर शहीद ने ये बात बताई थी कि मैं जब रब्बा से चलने लगा था मेरी बीवी ने मुझे कहा था कि देखो मेरे ख्वाब में देखा है कि तुम खिदमत दीन के सफर से कफन में लपेटे हुए वापस आए थे, और जो कुछ भी था मुकद्दर था हम इस पर राजी हैं, पर बहुत प्यारा मोहब्बत करने वाला वजूद, बहुत खिदमत करने वाला भाई हमसे जुदा हुआ है, एक नहीं दो भाई आज जुदा हुए हैं, इनकी जुदाई का सदमा तो जरूर है, लेकिन बात वही सच्ची है जो हमारे आका हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि बुलाने वाला है सबसे प्यारा, उसी पे है दिल तू जान फिदा कर। इन दो शहादतों को पेश नजर रखकर अपनी जिम्मेदारियों को फिर समझें। इसके जो शहीद हो रहे हैं वो एक अपने पीछे एक पैगाम छोड़ के जा रहे हैं, और वो पैगाम यह है कि जब तक हमारी पेश गई, जब तक बस चला, हमने अपनी तमाम ताकतें इस राह में झोंक दी हैं, अब खुदा ने हमें बुला लिया है, हमें ताकत नहीं है कि अब हम कुछ मजीद कर सकें। ऐ वो जो पीछे रह जाने वाले, तुम अपने वक्त की कदर करो, देखो खुदा ने तुम्हें मजीद खिदमत की तौफीक बख्शी है, अपनी हर ताकत को इस राह में झोंक दो ताकि जिस तरह मरते वक्त मैं खुदा से राजी हूं, खुदा मुझसे राजी है, तुम भी इस हालत में जाने दो कि तुम खुदा से राजी हो और खुदा तुमसे राजी हो। इस जज्बे के साथ अगर जमात दुनिया में काम करेगी तो देखें कितनी जल्दी जल्दी दुनिया की तकदीर बदलेगी। दुनिया के हालात तो बहुत ही गंदे हैं, लेकिन अफसोस है कि लोग नसीहतों से फायदा नहीं उठाते, अमानतों में खयानत करते हैं और सोचते नहीं कि खुदा के हुजूर जवाब दे होंगे और कैसे जवाब देंगे। बांग्लादेश के हालात आपके सामने हैं, उनके मुतल्लिक मैंने एक खुतबे में ये खुलम खुला इजहार किया था कि हुकूमत इसमें लाजिमन शामिल है और पूरी तरह जिम्मेदार है, और एक बाकायदा साजिश के नतीजे में ऐसा हुआ है। वहां जब बाज लोगों तक ये बात पहुंचाएगी तो उन्होंने कहा क्या सबूत है इस बात का? हमने कहा सबूत तो आपको हम जो बता रहे हैं कि आइंदा क्या हो रहा है और किस तरह होना है वो खुद सबूत है, हुकूमत का रद्देअमल सबूत है, लेकिन अब हमें एक ऐसा सबूत भी मिला है जो बिल्कुल खुलम खुला कतियत के साथ हुकूमत के मुलव्वस होने को साबित करता है। जमात ने मुख्तलिफ ममालिक में जो मुख्तलिफ हुकूमतों से एहतजाज किए कि तुम्हारी आंखों के सामने एक मुल्क सियासत के दायरे से बाहर जाकर वहां जुल्म कर रहा है जहां सियासत का काम ही कोई नहीं है, अपने दायरा कार से बाहर होकर, यूनाइटेड नेशंस का काम है, तुम लोगों का काम है, उन पर दबाव डालो, उनको बताओ कि अपने दायरे कार के अंदर रहें और वहां भी इंसाफ का मामला करें। तो एक बड़े मुल्क के जो ताकतवर मुल्क है उसके वजीर आजम ने अपने एक मेंबर पार्लियामेंट को हमारे मामले में जब उसने उनको तवज्जो दिलाई तो जवाबन ये लिखा कि जो जो बातें आपने बयान की हैं वो दुरुस्त हैं, उसके अलावा भी बातें बयान की उन्होंने। जमात को जो नुकसान की और हमले के तरीके की खबर थी उसे बहुत ज्यादा वजाहत के साथ उनके अपने एम्बेसडर्स वगैरह की तरफ से या जो भी इस काम पर मुकर्रर हैं उनको इतला मिल चुकी थी, और उन्होंने कहा यही नहीं बल्कि वजीर मजहबी अमूर, जिसको मजहबी अमूर का वजीर कहा जाता है लेकिन दरअसल मजहबी फितना का वजीर होता है वो, जहां जहां भी मजहबी अमूर के वजीर हैं आप बिला शुबा ये कह सकते हैं कि मजहबी फितना फैलाने का वजीर है, जहां मजहबी फितना फैलाने की जरूरत ना हो वहां मजहबी वजीरी की जरूरत नहीं हुआ करती, और बड़ा बदनसीब होता है वो शख्स जिसको मजहबी वजीर के तौर पर मुकर्रर किया जाए, इसके सिवा उसकी कीमत ही कोई नहीं कि वो फितना फैलाएगा। बस वहां भी फितनों के इस वजीर ने इस बैरूनी हुकूमत के वजीर आजम के बयान और इकरार के मुताबिक ये एतराफ किया है कहीं कि हाँ हुकूमत ना सिर्फ मुलव्वस है बल्कि हुकूमत ही ये फैसले कर बैठी है कि यूं हमने करना ही करना है, यानी शुरू से तमाम साल हुकूमत की चलाई हुई है। मैं उनको नसीहत कर सकता हूं, कमजोर इंसान हूं, एक ऐसी जमात का सरबराह हूं जिसका सरबराह से बढ़कर एक अदना खादिम हूं, और इसी में मेरी इज्जत है कि मैं जमात का खादिम बन सकूं, इसलिए मैं जानता हूं कि मेरे बात का उनके लिए कोई उन पर कोई किसी किस्म का ऐसा असर नहीं पड़ सकता कि वो झुक कर उसे सुने, लेकिन जो सच्ची और नेकी की बात हो उसे झुक कर सुनना खुद सुनने वाले के मफाद में होता है। मेरे पास कोई ताकत नहीं है जिसके जोर से मैं ये बात आपके दिल में जानशीन कर सकूं, मगर बांग्लादेश की मौजूदा सरबराह को मैं तवज्जो दिलाता हूं कि दूर की तारीख नहीं करीब की तारीख पर नजर तो डाल के देखें, जिन जिन लोगों ने अहमदियत से यह सलूक किया था उनका क्या असर हुआ और क्या अंजाम हुआ, और क्या कहीं भी अहमदियत का अदना सा भी दखल उस अंजाम में था? यानी जाहिरी तौर पर अहमदियों की कोशिशों से क्या वो उस बदअंजाम को पहुंचे हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं? हरगिज नहीं। अहमदियों को इतना दखल जरूर था कि अहमदियों पर जुल्म किया गया और खुदा ताला ने खुद उसका इंतकाम लिया है, और आने वालों को एक के लिए एक नसीहत एक इबरत का पैगाम छोड़ दिया है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमसे भी ऐसा ही सलूक किया जाए। सबसे पहले अमीर फैसल के साथ जो वाकया गुजरा है 1973 में वही थे जिन्होंने वहां समिट कॉन्फ्रेंस मुसलमानों की जब मुनक्किद हुई लाहौर में तो वहाँ पूरी तरह इस साजिश में शरीक और जमात को गैर मुस्लिम करार देने में उन्होंने पूरी हामी भरी और उसके नतीजे में फिर भुट्टो साहब को यह हौसला हुआ। उनका क्या अंजाम हुआ? क्या इससे पहले कभी किसी सऊदी सरबराह का यह अंजाम हुआ था? एक गैर मामूली अंजाम है, कोई आम अंजाम नहीं है। फिर भुट्टो साहब की बारी आई, उनको भी जाती तौर पर मैंने खुद समझाने की एक दफा कोशिश की थी मगर नहीं समझे, पता नहीं कैसे दबाव में आ गए थे। और उनको वो जो जिस अंजाम को पहुंचे हैं वो आपके सामने है। क्या हुकूमत पाकिस्तान के किसी सरबराह का ऐसा अंजाम हुआ? फिर जिया साहब की बारी आई, उनको मैंने जाती तंबी उस तरह तो ना की लेकिन खुतबे के जरिए खुलेआम तंबी की, सारी दुनिया को सुनाकर की कि देखो तारीख अपने आप को इस तरह जरूर दोहराएगी कि खुदा के बंदों के साथ जिसने जुल्म का सलूक किया है खुदा की तकदीर उसको खाली नहीं जाने, खाली नहीं छोड़ेगी, जरूर उसे इबरत का निशान बनाएगी। बस तो मैंने उनको बताया कि रात में जो अल्लाह ताला ने फिर बताया है कि ये तारीख अपने आप को दोहराने वाली है, मैं तुम्हें मुतनबे करता हूं कि तुमसे कुछ हो जाएगा। अगला खुतबा आने से पहले पहले आसमान में उनका जहाज फट गया और उसके साथ उनके सारा तकबर तितर बितर हो गया और जर्रा जर्रा होकर बिखर गया। तीन वाकयात गुजर चुके हैं, एक भी इनमें इस्तिस्ना नहीं हुआ। ये तीन ही हैं जिन्होंने इस तमाम तारीख में जमात को गैर मुस्लिम करार देने में मरकजी हैसियत, मरकजी किरदार अदा किया था। अगर ये मुजाहिद अव्वल थे, अगर खुदा की खातिर और खुदा के दीन की खातिर और मोहम्मद मुस्तफा के इश्क में यह ऐसा किया गया था तो कैसा खजालिम खुदा है जो हर ऐसा करने वाले के हाथ काट देता है, उसका सर पांच पांच तक होता है और उससे ऐसा सलूक होता है जो उस जैसों से पहले कभी नहीं हुआ। ये तमाम एक गैर मामूली खुदा की तकदीर के मजर बन चुके हैं। कभी पाकिस्तान के किसी सरबराह को फांसी नहीं दी गई, कभी पाकिस्तान के किसी सरबराह का जहाज इस तरह आसमान पर फट फट कर रेजा रेजा नहीं हुआ, कभी सऊदी अरब का कोई बादशाह अपने अजीजों के हाथों इस तरह जिल्लत के साथ कत्ल नहीं हुआ। तो अगर बांग्लादेश की सदर मोहतरम ने यही फैसला किया है कि वो तीन को चार करने वाली होंगी यानी इन मानों में, तो उनकी मर्जी है, कोई उनको रोक नहीं सकता, मगर खुदा की तकदीर को भी कोई रोक नहीं सकता। आप जो चाहें करें, खुदा की तकदीर जरूर आपका ताकुब करेगी और आपको छोड़ेगी नहीं। ये एक आजाना नसीहत है, ये पेशगोई इस तरह इन मानों में नहीं कि खुदा तला ने मुझे मोयन आपके मुतालिक बताया, मगर मैं ये आपको बता देता हूं कि मैंने इन तीन वाकयात से एक ऐसा कती नतीजा निकाला है जिस पर बिना करते हुए मैं समझता हूं कि आपको इस्तिग़फ़ार से काम लेना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, अपने मुल्क को उन मसायब में ना धकेलें जो मसायब ऐसे जुल्म के बाद जरूर पीछे किया करते हैं। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए और बांग्लादेश के गरीब मुसलमानों को हामी होना फिर हो। आज नमाज जुमा के बाद इन दोनों शहदा की नमाज जनाजा होगी। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.